ஹரே கிருஷ்ணா. आज के इस श्री कृष्ण भगवान की दिव्य लीलाओं के वर्णन में आपका स्वागत है. मैं आप सबका बहुत ऋणी हूँ कि मुझे आपके बीच में बैठने का मौका मिल रहा है. हरे कृष्ण. तो आज 16 अगस्त है, मंगलवार का दिन. श्री राधा गिरधारी मंदिर, श्री कृष्ण लीला, हरि बोल. बहुत सुंदर व्यवस्था है, क्योंकि श्री कृष्ण भगवान की जो लीला है, चरित्र है, उसका श्रवण जीव के लिए बहुत ही कल्याणकारी है. यहाँ तक कि भगवान की जो सबसे श्रेष्ठ भक्त हैं, गोपियां, फ्लावर्स, ठीक है, सबके लिए थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं 10%. तो वो भगवान की गौरव में कहती हैं, तव कथामृतम तप्त जीवनम कभी भीड़ितम कलमशापहम. जितने भी कलमश जीवन में हैं, हमारे जीवन में कितने कष्ट हैं, कितने ताप हैं, कितने पीड़ाएं हैं, यातना हैं. भौतिक जीवन तो सब इन्हीं यातनाओं पीड़ाओं से भरा हुआ है, लेकिन वो कहते हैं कि हम भी तड़प रहे हैं आपके विरह में. और वो कह रहे हैं कि आपकी कथा का स्मरण, श्रवण, चिंतन, चर्चा, इससे सारे कष्ट मिट जाते हैं. यहां तक कि जो जीवन हमारा तप्त जीवन है, जल रहा है भौतिक दुनिया के तापों से, संसार दावा नल लीला लोका, हम सब लोग दावा नल, यानी कि संसार के दावा नल में सब लोग जल रहे हैं, जन्म मृत्यु की श्रृंखला में तड़प रहे हैं. इसलिए श्री कृष्ण भगवान के नाम, उनके गुण रूप, उनके लीलाओं का आश्रय लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है. इसलिए प्रभुपाद जी ने मंदिर खोले हैं, ताकि सभी बद्ध जीव जो दुनिया में कष्ट भोग रहे हैं, वो ऐसी जगह पर आ सके जहां पर कृष्ण भगवान की चर्चा, उनके गुण रूप की चर्चा, उनकी सेवा, उनके नाम स्मरण, उनका चिंतन, उसमें मग्नता मुमकिन हो सकती है. अच्छे भक्तों का संग प्राप्त हो आम जनता को, और जिसके द्वारा भगवान कृष्ण का संपर्क, भगवान कृष्ण के बारे में श्रवण, उनके प्रति सेवा भाव जागृत, एक अवसर मिले. और दुनिया में ऐसी कुछ जगह है जहां पर यह अवसर मिल सकता है. सब जगह पर माया, रजोगुण, तमोगुण, आतंक, पीड़ा, सब जगह का कष्ट जो है, क्लेश, सब जगह पर भरे हुए हैं. सब जगह पर लोगों का मन बहुत इतना असंतुलित है, जरा सी बात पर झगड़ा हो जाता है, जरा सी बात पर मारने को आ जाते हैं, खून खराबा होता है, लूट मार होती है, कोई सुरक्षित जगह नहीं है, सब जगह असुरक्षा है, सब जगह अस्थिरता है. जीव के लिए बहुत हानिकारक वातावरण है आजकल की दुनिया में. हम लोग इतने भाग्यशाली लोग हैं, हम लोग मंदिर में आते हैं, अपने हॉस्पिटल में भी भक्ति में वातावरण है और भक्तों के संग में रहते हैं, हमको ये पता नहीं चलता है बाहर दुनिया में क्या चल रहा है. इतना कष्ट है बाहर की दुनिया में. थोड़ा सा कदम बाहर रखते हैं ना, कभी वृंदावन जाने के लिए ट्रेन में बैठते हैं, कभी स्टेशन पे जाते हैं बोरीवली के, कभी कहां जाते हैं, तो पता चलता है कि दुनिया में क्या चल रहा है. फिर भी हमको पता नहीं है कि हमारे ऊपर कैसे भगवान की अचिंत कृपा है, कि हमको असल में भौतिक दुनिया के गर्भ के अंदर क्या भयंकर चीज चल रही है वो पता नहीं है हमको अभी तक, ना हमको जानने की जरूरत है. कभी कभी उड़ते उड़ते खबर आ जाती है तो समझ में आता है कि हमको भगवान ने किन चीजों से बचाया है. वी डोंट इवन नो. जब रात को बच्चा सोता है तो जब बिच्छू काटने को आता है तो माता उसको परस्पर मार देती है, तो बच्चे को पता भी नहीं कि कौन से कष्ट से माता ने उसको बचाया, पता ही नहीं उसको. वैसे एक सुरक्षित निश्चिंत बालक की तरह हमारी अवस्था है. भगवान ने हमको अपने गोद में रखा है, सुरक्षित एकदम, बाहर के सारे आतंक से दूर रखा है, और ये सब उसमें से अनंत उसमें वस्तुओं में से श्री कृष्ण लीला एक सुंदर माध्यम है जो हमको भगवान ने दिया. लो, आई लव यू, इसलिए मैं आपको मेरी लीलाओं का परिचय कराता हूं. कितनी सुंदर बात है, कितनी श्रेष्ठ बात है हमारे जीवन में. पता नहीं हमने पिछले जन्मों में कितने सारे अच्छे कर्म किए होंगे. तो नंद महाराज भी सोचते हैं ऐसे, जब कृष्ण भगवान का किसी राक्षस से बच जाते, मतलब वो राक्षस को मारते हैं, लेकिन उनको, अरे इतना भयंकर राक्षस आया था, अरे हमारा बालक बच गया, जरूर हमने पिछले जन्मों में बहुत अच्छे कार्य किए होंगे। वो कहते हैं कि हमने कुएं खोदे होंगे, हमने रास्ते बनाए, राजमार्ग बनाए होंगे, हमने गरीबों को दान दिया होगा, हमने ब्राह्मणों को सेवा की होगी। ऐसे अनंत एक्टिविटीज जो है, लीला जो है, कार्य जो है, उसको गिनती करते हैं कि हमने जरूर ये किए होंगे। तो ये भी बात निश्चित है, हमारे लिए कोई गर्व की बात नहीं है ये, लेकिन निश्चित बात है कि हमने भी कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, इसलिए हमको भगवान के नाम का परिचय हुआ, भगवान के विग्रह का परिचय हुआ, भगवान के धाम का परिचय हुआ, भगवान के भक्तों का परिचय हुआ, भगवान की लीलाओं का परिचय हुआ, भगवान की सेवा करने का थोड़ा बहुत इच्छा हमारे मन में है, भगवान के भक्तों को हम पसंद करते हैं, बाहर के लोगों को थोड़ा सा हमको कष्ट होता है मिलने में, ये सब भगवान की कृपा का परिणाम है। इसलिए इस कृपा को कभी भी लाइटली लेना नहीं चाहिए, शुड नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। अरे ठीक है, क्या है, इतने सारे भक्त है, क्या पड़ी बात, ये सब मूल्यवान चीजें हैं। हाँ, एक रत्न जो है हजारों पत्थरों में बहुत मूल्यवान होता है, लेकिन समझो आप हजारों रत्नों में पड़े होंगे तो आपको लगेगा क्या बड़ी बात है, सब रत्न ही रत्न, इतना क्या है उसके अंदर, सब जगह रत्न है, लेकिन वो रत्न कितने कीमती है और उसको एक जगह इकट्ठा करके भगवान ने आपको दिया है, हमको सबको दिया है, इसलिए हमको सब इसकी सब चीजों की वैल्यू करना चाहिए। इसलिए रोज भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि आपकी लीलाओं का श्रवण हो रहा है, आपकी लीलाओं का चिंतन हो रहा है, आपकी लीलाओं के बारे में तैयारी हो रही है। हाँ, भगवान का जन्म हो रहा है, उनके बारे में अभी देखो सब जगह गुब्बारे लगाए हुए हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी हो रही है। हाँ, इस विश्व का, इस निर्माण का, इस सृजन का सर्वश्रेष्ठ बालक जो है उसका जन्म होने वाला है। हाँ, तो कितनी तैयारी करनी चाहिए, कितनी भी तैयारी करेंगे तो कम ही है वो। अरे वो माखन फेंकते थे उधर ब्रज में। हाँ, माखन फेंक रहे हैं, फल फेंक रहे हैं, रबड़ी फेंक रहे हैं। इतनी प्रचुर मात्रा में आप समृद्धि थी कि भगवान का जन्म हुआ। हाँ, हम लोग तो नहीं कर सकते, हमारे पास ना माखन है, ना गाय है, ना कुछ है, लेकिन भावना से जरूर कर सकते हैं। नंद महाराज ने क्या, वसुदेव ने क्या किया, चारे जेल में थे वो जब उनको कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, उनके पास क्या था, कुछ नहीं था, सब वो कैद में थे, तो उन्होंने मन में हजारों लाखों गायों को ब्राह्मणों को दान किया। आप भी कर सकते हैं, आपके पास अगर हजारों लाखों गाय नहीं भी है, सुरभि गाय, तो मन में उनको अच्छी तरह से सुशोभित करके, अलंकार डाल के, अच्छी तरह से एम्ब्रॉयडरी वाली चादर डाल के, उनके पैरों में घुंघरू बांध के, उनके सिंह पे सोने के कैप लगा के, उनके गले में सोने की घंटी लगा के, उनके पूंछ को अच्छे आवाज वाले घुंघरू लगा के, आप ऐसे हजारों गाय सब गिने चुने ब्राह्मणों को, सन्यासियों को दान कर सकते हैं। भगवान के जन्म के दिन मंदिर में जब अभिषेक होता है तो अभिषेक के बाद में क्या होता है, एक यज्ञ होता है उनके जन्म के उपलक्ष्य में। हाँ, और उस जन्म के यज्ञ के अंदर एक ब्राह्मण को बुलाते हैं, किसी भी भक्त को बुलाते हैं जो ब्राह्मण दीक्षित है, और वो कहते हैं कि आप, जैसे मुझे ही बुलाया गया था, कई बार मुझे बुलाते हैं, तो वो कहते हैं कि आप इस यज्ञ के पुरोहित हो, मतलब करने वाले नहीं, करने वाले कोई और है, लेकिन आप वो सम्माननीय ब्राह्मण हो जो जब आपको कहा जाएगा तो आपको आशीर्वाद देना है। कहते हैं कि आपको भगवान को आशीर्वाद देना है और भगवान के प्रतिनिधि के रूप में आपको गाय बांटनी है ब्राह्मणों को मन के अंदर, तो तैयारी कीजिए आप। तो बहुत देर तक हम लोग मन में तैयारी करते हैं कि कुछ काली गायें हैं, कुछ गोरी गायें हैं, कुछ काली गाय के ऊपर गोरा धब्बा है, कुछ गोरे गाय पर काला धब्बा है, कुछ भूरी रंग की गाय है, कुछ गेहूं रंग की गाय है, कुछ भूरी रंग की गाय है, ऐसे हम झुंड बनाते हैं मन में और सबको माला पहनाते हैं, अलंकार पहनाते हैं मन में बैठ के, और सब तैयार करते लाइन में खड़े रहके, और सब ब्राह्मणों को तय कर लेते कि किसको उसको देना है, राधा गोविंद जी महाराज को देना है, गोपाल कृष्ण महाराज को देना है, इंद्रधनु महाराज को देना है, और रमेश चंद्र गोस्वामी को देना है, और पद्मनाभ गोस्वामी को देना है, सब लाइन में मना करते हैं, रेडी करते हैं, और फिर जब बोलते हैं अभी दान दो गाय का, तो मन आंख बंद करके चिंतन करके सबको दान देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास नहीं भी होंगे तो मन से जरूर कर सकते हैं, और मन की सेवा भगवान स्वीकार करते हैं। जब वसुदेव ने मन में लाखों गायों को दान कर दिया भगवान कृष्ण के जन्म के समय पे, तो भगवान ने उस सेवा को स्वीकार किया। ऐसा नहीं कि केवल हम शरीर से सेवा कर सकते हैं या बाह्य वस्तु से सेवा कर सकते हैं, भगवान की सेवा मन से भी होती है। प्रामाणिक मन चाहिए, शुद्ध मन चाहिए, हाँ, निष्पाप मन चाहिए, पाप मुक्त मन चाहिए, तो सुंदर आयोजन है, भगवान का जन्म होने वाला है, बलदाऊ जी का जन्म हो चुका है, हाँ स्वाति नक्षत्र में, तुला लग्न में, उच्च ग्रह जब भी अनुकूल अवस्था में थे, दोपहर के समय श्री बलदेव जी श्रावण शुद्ध पूर्णिमा के दिन अवतरित हुए, हाँ व्यास देव जी आए, देवल आए, देवरात मुनि आए, वशिष्ठ मुनि आए, और व्यास देव जी ने बड़ी 100 प्रदक्षिणा की बलराम जी को, सॉरी 100 बार दंडवत किया, एक परिक्रमा किया और फिर स्तुतियां की बलदेव जी की, क्या क्या करने वाले वो बताया, क्योंकि त्रिकालदर्शी है व्यास देव जी, हाँ वो अभी प्रसंग हो चुका है, सब आकाश से पुष्प वर्षा हो रही है, छोटी 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 धीरे धीरे वर्षा हो रही है, सुंदर वातावरण था बलदेव जी के जन्म के समय। व्यास देव जी कहते हैं कि आपका नंद भवन जो है वो प्रकाशित हो गया है इस बालक के जन्म देने की वजह से, हम आपके बहुत आभारी हैं और आपको बधाई देते हैं ऐसा सुंदर दिव्य बालक आपके जन्म घर में जन्म हुआ है इसका। और फिर कुछ दिन बाद में कृष्ण भगवान का जन्म होता है। एनीवेज उसकी कथा तो होगी, आज का विषय जो है वो वत्सासुर और बकासुर वध का है। तो इसका बैकग्राउंड ऐसा है, नंद महाराज को और वृषभानु महाराज को बहुत साल तक संतान प्राप्त नहीं हुई, बेचारे दुखी थे, तो बड़े अच्छे मित्र भी थे वो एक दूसरे के। वृषभानु महाराज बरसाना में, वृषभानुपुर में उनका राज्य था, और नंदगांव में नंद महाराज का राज्य था। तो मिलते हैं, बात करते हैं, कहते हैं कि जमुना जी जो है वो बहुत पवित्र है, और जमुना जी के सान्निध्य में सब कुछ शुभ हो जाता है, तो क्यों ना हम अपना सारा राज्य जो है वो जमुना जी के किनारे में बसाएं, हो सकता है हमें भी और आपको भी दोनों को भी संतान प्राप्ति होगी। और तुरंत वो शिफ्ट हो जाते हैं, वृषभानु महाराज रावल में और नंद महाराज गोकुल में। यथावकाश बलराम जी, कृष्ण भगवान, राधा रानी सबका जन्म होता है और तुरंत आतंक शुरू होता है कंस का। हाँ, बड़ी सुंदर सुंदर कहानी है, उसमें हम अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। तो पहले ही 6 दिन के समय ही पुतना आती है, भगवान का षष्ठी पूजन हो रहा है, या पुतना आती है, भयंकर राक्षसी आती है, फिर शकटासुर आता है, पुतनावर्त आता है, फिर यमलार्जुन पेड़ गिर जाते हैं, अरे क्या हो क्या रहा है, रोज के समय पे कुछ ना कुछ हो रहा है। आप सोच सकते हैं आपके घर में एक नन्ना बालक जन्म हो गया है और एवरीडे कोई उसको मारने को आ रहा है, सी जस्ट इमेजिन क्या गोपालों की ब्रजवासियों की अवस्था होगी। एक तो जब से प्रेम उमड़ रहा है मन में, आनंद का सागर उमड़ रहा है, और साथ साथ में साइमल्टेनियसली रोज की स्थिति में कोई भयंकर राक्षस आ रहा है, एकदम अनाकलनीय अवस्था में, कोई हवा के झोंके के रूप में आ रहा है, कोई घाड़ी के रूप में आ रहा है, हाँ कोई सुंदर स्त्री बन के आ रहा है, तो पेड़ गिर रहे हैं उसके ऊपर, अरे सोच सकते हैं आपका बालक आंगन में खेल रहा है, धड़ाड़ करके 2 पेड़ गिर गए, कितना डर लगेगा आपको, अरे रोज के समय पे हो रहा है। तो फिर ये जो यमलार्जुन उद्धार की लीला के बाद में वो सब ग्वाल बाल आके बैठ जाते हैं, वहां पर एक नंद बैठक है, बहुत सुंदर जगह है वो गोकुल में, 84 खंबा बोलते हैं उसे, आप गए उधर, कुछ लोग गए होंगे, बहुत सुंदर जगह है, जहां पर वो क्या जगह है, कृष्ण भगवान के बारे में चर्चा करने की जगह है वो, रोज शाम को बैठते हैं चर्चा करते हैं, आज क्या हुआ, अरे ऐसे किया वैसे किया, और आमतौर पे रोज राक्षस का वर्णन हुआ करता था कि वो आया ऐसे किया, फिर कन्हैया को ऐसे हुआ, फिर कन्हैया ने उसको मारा, फिर ऐसे हुआ, अरे बाप रे कैसे मारा, पता नहीं हमारा बालक कौन है, ये वो सब, कभी अद्भुत रस, कभी आनंद रस, कभी प्रेम रस, कभी घर लग रहा है, कभी क्या हो रहा है, लेकिन सारे रसों का चर्चा जो है वो नंद बैठक पे हो रहा है। नंद बैठक बहुत पावरफुल जगह है, क्योंकि वहां पर हमेशा कृष्ण के बारे में चर्चा चलती रहती है, और साथ साथ क्या किया जाए कृष्ण को बचाने के लिए, सुरक्षा देने के लिए, प्रेम देने के लिए, वो डिस्कशन वहां पर होता है। इसलिए बहुत बहुत शुद्ध और पवित्र जगह है, क्योंकि वहां पर अनंत कृष्ण के बारे में चर्चा हुई है, वो भी श्रेष्ठ गोपालों के द्वारा, तो वहां पर चर्चा होती है, वो सब लिस्ट पढ़ते हैं पूरी, पुतना से लेके तृणावर्त शकटासुर से लेके क्या क्या हुआ है। तो वो वृषभानु महाराज और नंद महाराज कहते हैं अभी ये जगह सुरक्षित नहीं है, अभी हमको ना जाना चाहिए यहाँ से, क्योंकि वो रोज रोज इधर से जमुना पार करेंगे तुरंत मथुरा, मथुरा से तुरंत राक्षसों का आक्रमण, बहुत आसान पड़ रहा है उनको, उनको दूर चले जाना चाहिए। अभी हमारा यहाँ आने का जो प्रयोजन है संपन्न हो चुका है, बालकों की प्राप्ति हुई है, कृष्ण बलराम हमारे घर में, श्री जी आपके घर में, सब बढ़िया चीज है, चलो हम चलते हैं। तो सब लोग अपने बैलगाड़ी और हाथी और घोड़े और सब में बिठाकर अपना सामान लेकर, बछड़ों को कंधे पे लेकर, कुछ गायों को चला रहे हैं बैलों के साथ में, और वृषभानु महाराज और कीर्ति मैया और राधा रानी हाथी पर बैठे हैं, उनको लोग हवा दे रहे हैं और पंछियों की आवाज हो रही है। बहुत सुंदर वर्णन गोपाल चंपू में दिया है उसका। हाँ, शिफ्टिंग फ्रॉम गोकुल टू नंदगांव एंड बरसाना। उसके बीच में उनका एक हॉल्ट भी हुआ है। कहां पर हुआ है? छटिकरा में। छटिकरा में नंद बाबा का तंबू था और उधर एक मुखारा गांव है, हाँ वसती नाम का एक गांव है राधा कुंड के पास में, वहां पर वृषभानु महाराज का तंबू पड़ा था। और शहर की तरह छटिकरा कहाँ है और राधा कुंड कहाँ है, 28 किलोमीटर दूर है आज के भी कैलकुलेशन से। इतना बड़ा तंबू, क्योंकि राजा थे ना वो, उनका पूरा लवाजमा, पूरी गाय, लाखों गाय चल रही है, लाखों ग्वाल बाल चल रहे हैं, इनके उनके सबका बहुत ऐश्वर्य संपन्न काम है सब उनका। और फिर वहां से फिर वो अपने विश्वानुपुर बरसाना और नंदगांव पहुंचते। तो तभी भगवान 3 साल 4 महीने की उम्र के थे, छोटे से अवस्था में। और गोपाल चंपू में सुंदर वर्णन दिया है कि भगवान जब 1 साल के हुए तो लौकिक दृष्टि से वो 1.5 साल के हुए, मतलब उनकी जो बढ़त थी वो 1.5 गुना थी। जब भगवान 2 साल के हुए तो उनकी एक्चुअल आयु 3 साल की थी। हरे कृष्णा। और जब 3.5 साल के हुए तो उनकी 5 साल की उम्र थी। तो एक्चुअली जब वो छोटे से थे तो उनको बछड़ों का जो जिम्मेदारी दिया गया, अभी आप बछड़ों को चलाओ। नंद महाराज को कोई जरूरत नहीं थी अपने बालकों को बछड़े चरवाने के लिए, तो राजा थे, उनके पास कई नौकर थे, हजारों नौकर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजपुत्रों को क्या जरूरत है गाय चराने का? लेकिन ब्रिज का कल्चर है ये, चाहे राजपुत्र हो चाहे चपार का पुत्र हो, गाय चराना ही है। आज भी कल्चर है, कोई ब्रिजवासी है समझो 50 साल 20 साल 30 साल कहीं बाहर गांव रहा, कभी किसी नौकरी के लिए रहा, कभी कभी लोग परदेश भी चले जाते हैं, लेकिन 50 साल के ऊपर बाद में लौट के आते हैं, 50 साल के बाद भी गाय चराते हैं, क्योंकि कल्चर है। वो कल्चर कितना जरूरी है। नंद महाराज ने अपने बालकों को बहुत सुंदर कल्चर दिया, संस्कृति दी, संस्कार दिए उनको बहुत सुंदर। तो बचपन से ही बछड़ों को दे दिया उनको। और क्या रूल था कि वृषभानुपुर की जो सीमा है और नंदगांव की जो सीमा है वहां तक ही चलना है, उसके आगे नहीं जाना है। और क्या नियम था कि नंदगांव के पर्वत पर जब चढ़ेंगे चोटी पर एकदम और खिड़की से देखेंगे तो दिखना चाहिए कहां पर है, उसके परे जाना नहीं, चारों ओर जहां भी दिखेंगे वहां तक ही गाय ले जाना है, बछड़ों को लेके जाना है, ऐसा नियम था। जब भी चिंता होगी तो चढ़ेंगे ऊपर खिड़की से देखेंगे कहां पर, अरे हाँ खदीरवन में, अरे हाँ उधर पलसो गांव में, अरे हाँ उधर नंदा कुंड के पास में। बस ये उनका वत्सपाल लीला का नियम था। वत्सपाल यानी वत्सों को रखने वाले कृष्ण भगवान। तो फिर वो लीला कर रहे हैं, कैसे खेल रहे हैं, उनको बालकों को लेकर, बाल बच्चों को लेकर और बछड़ों को लेकर जा रहे हैं, अभी लुका छुपी खेल रहे हैं। हाँ, उधर एक लुकलुक कुंड है कामे वन के पास, बहुत सुंदर जगह है, आंख में चोली खेलते हैं वहां पर वो, और एक बहुत सुंदर कुंड है वो चरण पहाड़ी से दिखता है उधर, और कामे वन उनकी खेलन वन है, पूरा बचपन का लीला जो है वो कामे वन में हुआ है। फिर एक सुंदर कार्य करते थे, जब पंछी आकाश से उड़ते थे तो उनकी छाया पड़ती ना जमीन में उड़ने वाली, तो छाया में पकड़ने के लिए सब भागते थे। कई पंछी उड़ रहे, सब बालक पंछियों की छाया को पकड़ने को भाग रहे, ये लीला करते थे। कभी घुंघरू की ध्वनि बजाते थे, नंद भगवान बलराम जी और कृष्ण भगवान घुंघरू बजाकर अच्छी तरह से म्यूजिक बनाते थे और उस पर सब ग्वाल बाल नाचते थे। फिर बांसुरी बजाते थे, अभी आपके यहाँ पर इस लिखा है ना, वहां पर टेलीट्रैक्स कम्युनिकेशन स्पॉन्सर्ड, वहां पर एक चित्रपट है, वहां पर बड़े वृक्ष पर कृष्ण भगवान झूला झूल रहे हैं सखाओं के साथ, कभी सखाओं को झूला रहे हैं, कभी खुद सखाओं से झूल रहे हैं, कभी बलराम जी को झूला रहे हैं, कभी बलराम कृष्ण को सखा झूला रहे हैं, इतना आनंद ले रहे हैं। इतना बड़ा ऊंचा झूला और इतना गोल गोल घुमाते थे उसको, कभी डराने के लिए लोगों को उल्टा करके भगवान डराते थे, सब बाल बाल डरते थे, फिर खेलते थे, फिर हंसते थे, फिर कभी मेंढक बनते थे। हाँ, राधा गोविंद जी महाराज बहुत सुंदर बताते हैं, वो कृष्ण भगवान मेंढक बनते थे और मेंढक की तरह कूदते थे, और कभी वैसे कूदते कूदते जमुना जी में कूद जाते थे, जैसे मेंढक कूदता है ना जमीन से जमुना जी में, ऐसे कृष्ण भगवान बलराम जी मेंढक बन के जमुना जी में कूदते थे। फिर कभी गेंद खेलते थे, और आमले का फल है ना, आमले का फल, बेल का फल, उससे गेंद खेलते थे। महाराज जी बताते हैं कि तो अभी लोगों को मोबाइल चाहिए बच्चों को, हर बच्चों को मोबाइल खेलने को चाहिए। उस समय में क्या है, पेड़ से फल गिर गया उसी को कैच कैच खेलते हैं, यहाँ से वहां फेंकते हैं, वहां से यहाँ फेंकते हैं, मुड़ा के दो खा जाते हैं, नया फल लेते हैं, फिर खेलते हैं। सुंदर लीला करते थे भगवान। और कभी कभी कुश्ती खेलते थे, सुदामा जी और मधुमंगल साथ कुश्ती खेलते थे, सुदामा जी भगवान को हराते थे। तो ऐसे ही उन्होंने हरा दिया था उनको, और नेक्स्ट डे भगवान ने गोवर्धन को उठाया, तो सुदामा जी ने उनको पहले दिन हराया था कुश्ती में, तो उनको जरा ऐंठ है, बोल रहे थक गया होगा बेचारा, एक काम करो मैंने तुमको कल हराया था, मैं तुमसे ज्यादा बलवान हूँ, थक गए हो चलो मैं थोड़ा देर उठाता हूँ, आप बाजू में हो जाओ। नहीं नहीं कोई बात नहीं, मैं आपकी सेवा करूंगा, आप आराम से रहो, तो कम से कम मैं आपके हाथ को सपोर्ट करूंगा। ऐसे वो सोच रहे हैं, क्योंकि ये योग योग माया का प्रभाव है, वो ग्वाल वालों को अपने कृष्ण भगवान को देख रहे हैं, मित्र है हमारा, सब फ्रेंड, सब खेलते हैं, मजाक करते हैं, कंधे पे चढ़ते हैं, उसको डांटते हैं कभी कभी, कुश्ती में उसको जमीन पर पटकते हैं, धोबी पछाड़। इस प्रकार से कभी बैल बनते हैं, कभी गाय बनते हैं, कभी कंबल अपने पीठ पर लेकर चलते हैं, कभी गाय बन रहा है, कभी बुल बैल बन रहा है, और बैल बनकर बुल फाइट भी करते थे, पता है ना गांव में बैलों का युद्ध भी लगाते हैं, वैसे वो बैल बनकर भी कुश्ती खेलते थे एक दूसरे के साथ। सुंदर उनका गौ चारण की लीला है। तो ऐसे लीला में एक बार क्या होता है कि वो कृष्ण बलराम छोटे छोटे नन्हे से बालक बछड़ों को लेकर चला रहे, गाय चला रहे, अचानक एक बछड़ा घुसता है अंदर, तो आम तौर का बछड़ा नहीं है, नया बछड़ा है, और वो पूंछ उठा उठा कर सबके बीच में इतने जोर जोर से भाग रहा है कि सबको आश्चर्य होता है, कौन कहां से बच रहा है। और कृष्ण भगवान बलराम जी जो है वो कृष्ण भगवान को इशारा करते हैं, कोई नया बछड़ा आया है। कृष्ण भगवान देखते हैं, समझ जाते हैं कि ये बछड़ा नहीं है, राक्षस है, वत्सासुर प्रवेश करता है, जोर जोर से कूद रहा है, मतलब सबको डिस्टर्ब भी कर रहा है, सबका ध्यान भी आकर्षित कर रहा है, और थोड़ा सा अलग है वो, हटके है लोगों से। तो भगवान जो है उसकी पूंछ और दोनों पीछे के पांव पकड़ते हैं और उसको गोल 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 हवा में घुमाते हैं और जमीन पर पटकते हैं, फिर वो बहुत तिलमिला उठता है, फिर उसको उठाते हैं, और कपित नाम का वृक्ष है और वो वृक्षों का बड़ा घना वृक्षावली वहां पर है, उसको उठा के पूरा उस वृक्ष पर फेंक देते हैं, और जैसे ही वो वृक्ष पर फेंक देते हैं वृक्ष का प्रहार उस पर होता है, वृक्ष गिर जाता है, और वृक्ष के प्रहार से ये वत्सासुर मर जाता है, और वो वृक्ष जो है दूसरे वृक्ष पे गिरता है, और कई वृक्ष एक के साथ गिर जाते हैं, और अचानक उस मरे हुए बछड़े के राक्षस के शरीर से एक ज्योति निकलती है और भगवान कृष्ण के शरीर में विलीन हो जाती है। तो ये कथा नारद मुनि बहुलवास राजा को सुना रहे हैं, आपने सुना होगा भागवतम में दशम स्कंद में शुद्धदेव और बहुलाश्व ये दोनों का वर्णन आता है, शुद्धदेव गरीब ब्राह्मण है और बहुलाश्व बड़ा राजा है। तो ये राजा को नारद मुनि कथा सुना रहे हैं और ये गर्ग संहिता का प्रसंग है। तो जैसे ही ये घटना होती है और नारद मुनि बताते हैं कि ऐसे ऐसे हुआ, तो बहुलाश्व जी पूछते हैं नारद मुनि को कि ऐसे कैसे हुआ, उसका कारण क्या है, अरे इतना पापी राक्षस महादैत्य वत्सासुर। तो वो बताते हैं कि एक मूर नाम का राक्षस था, जिसके वजह से भगवान का नाम मुरारी पड़ा है ना, तो वो मुरारी मूर नाम का राक्षस, उसका पुत्र था, उसका नाम था प्रमिलासुर, और ये प्रमिलासुर जो था बहुत शक्तिशाली था, सब देवताओं को परास्त किया था उसने। तो प्रमिलासुर एक बार अपने मद में मत होकर वशिष्ठ मुनि के आश्रम में आता है, और वशिष्ठ मुनि के आश्रम में आकर देखता है अरे इनके पास वो कामधेनु है, उस कामधेनु को देखकर विश्वामित्र जी भी प्रभावित हुए थे, तो बड़ी लीला है उनकी, तो ये भी बहुत प्रभावित हो गए, अरे हमको कामधेनु चाहिए। तो वशिष्ठ मुनि बहुत त्रिकालदर्शी, बहुत सिद्ध आत्मा है, बहुत भयंकर भक्त है वो भगवान के, बड़े श्रेष्ठ भक्त है। तो वे क्या करता है प्रमिलासुर, गायक ब्राह्मण बनता है, ब्राह्मण बन के आता है और वशिष्ठ मुनि से गाय की दान मांगता है, ये गाय हमको दान दे दो। तो वशिष्ठ मुनि त्रिकालदर्शी है, सब जानते हैं ये कौन है, इसलिए वो चुप रहते हैं, कुछ बोलते नहीं है, शांत रह जाते हैं, वो जानते हैं कि राक्षस है ये, भेष बदल कर आया हुआ है, लेकिन जो गाय स्वयं जो है कामधेनु उनकी, उसको बहुत क्रोध आता है, उसको बहुत बड़ा गुस्सा आता है, और कहते हैं तुम गाय बन ब्राह्मण बनकर आया है, एक आदर्श सम्माननीय व्यक्ति का रूप धारण करके आया है और मुझे चोरी करना चाहता है, मतलब छल कर रहा है, ढोंग कर रहा है, मैं तुम्हें शाप देती हूँ कि तू बछड़ा बन जाएगा। वो तुरंत जो है बछड़ा बन जाता है, बछड़ा बनते उसका गर्व जो है एकदम चूर हो जाता है, पश्चाताप करता है, प्रार्थना करता है और पैर पड़ता है गाय के। तो गाय के कोई बात नहीं, वैवस्वत मनु के अधिकार में राज्य में जब 28वां युग खत्म हो जाएगा तो कृष्ण भगवान आएंगे, तभी तुम जब बालकों के बछड़ों के अंदर बछड़ा बन के घुस जाओगे तब तुम्हारा उद्धार होगा। तो ये प्रमलासुर जो है वत्सासुर बन के आया था, जब उसका उद्धार हुआ तो सायुज्य मुक्ति, राक्षसों को अन्य कोई कृपा नहीं होती है मैक्सिमम क्या होता है उनका सायुज्य मुक्ति। तो ऐसे ही कुछ दिन बाद फिर गाय चला रहे हैं, खेल रहे हैं, तो वहां पर एक सुंदर वन है खदीर वन। खदीर वन बहुत सुंदर वन है, आप लोगों में से कई लोग गए होंगे, उसको आजकल के जमाने में खायरा कहते हैं, खायरा। तो वो खदीर वन जो है वो उपनंद बाबा का वन है और वहां पर उपनंद बाबा की गाय रहती है, उनकी गौशाला भी है और उनके गाय के लिए वहां पर बड़ा एक माधव सरोवर भी है, वहां पर वो जल पीते हैं, स्नान करते हैं, उनकी सेवा हो जाती है, मृगोच्चारण करते हैं वहां पर, और कत्था के वृक्ष है बहुत वहां पर। खदीर यानी कत्था, वो आयुर्वेद में होता है ना खदीर आदि वटी, खदीर यानी कत्था, जिसकी वटी बनती है, जिसको चूसने से गला खराश होती है गले में तो अच्छी हो जाती है और वो खदीर से क्या होता है, अगर अपने मुंह में छाले गिरे होंगे तो खदीर को पानी में मिलाकर जो पानी है उसके कुल्ला करने से सारे गर्मी जो है निकल जाती है और मुंह के छाले भी ठीक हो जाते हैं। तो ऐसे कत्था के वृक्ष है वहां पर, और उपनंद बाबा के खिरक है, खिरक का मतलब जलाशय, जहां पर गायों को सेवा की जाती है। तो वो जगह पर खेलते खेलते नाचते कूदते सब ग्वाल बाल पहुंच जाते हैं, कृष्ण भगवान भी पहुंच जाते हैं और जलपान करते हैं, बैठते हैं, तो अचानक उनको एक भयंकर प्राणी नजर आता है, एकदम भयंकर, उसको देख के डर जाते हैं। वो बगुलों के स्वरूप में है, बगुला बनकर खड़ा है उधर वो माधव सरोवर के किनारे में। गर्ग संहिता में उसका वर्णन दिया है सरोवर के किनारे, भागवतम में दिया है जमुना जी के किनारे, दोनों सही है। क्यों सही है, कल्प भेद कहते हैं उसका, एक कल्प में जमुना जी के किनारे में, एक कल्प में खदीरवन में, जमुना जी के किनारे ही जो तालाब बना हुआ है उसके पास में। तो इतना भयंकर पक्षी है वो कि एक सफेद रंग का मानो पहाड़ हो, ऐसा जोरदार बड़ा पहाड़ हो जिसका जो नोक है पहाड़ का वो बादलों के ऊपर पहुंच गया है, और उसका सर जो था वो इतना इतना सख्त था मानो वज्र जैसा था, वो इतना सख्त और इतना पावरफुल था, उसको देख के ही डर लगता था, उसकी आंखें, उसकी चोंच और बड़ी लंबी लंबी आकाश से आकाश तक पहुंची हुई टांगे उसकी, और वो जोरदार मेघ गर्जना कर रहा था जोरदार। उसकी आवाज सुनते ही सब ग्वाल बार भयभीत हो गए, और उनके भयभीत होने की आगे जाकर इस बगुले ने तुरंत अपनी चोंच खोली और तुरंत कृष्ण भगवान को निगल लिया उसने, एक ही झटके में पलक झपकने के पहले भगवान को निगल लिया उसने। अरे कुछ समझ में आने के पहले ही, डर लग रहा है समझ में आने के पहले ही भगवान भी चले गए, बलराम जी और सारे ग्वाल बाल जो है निष्प्राण से हो गए, बेहोश से हो गए, गिर गए। और ये भयंकर अवस्था देखिए कि भगवान कृष्ण हमारे मालिक, हमारे स्वामी, हमारा मित्र चले गए, नष्ट हो गए। तो सारे देवता लोग आकाश से उतर गए, हाँ सबसे पहले इंद्र उतरे वज्र को ले। अभी देखिए ये वर्णन जो है ये सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित महाराज को नहीं किया है, क्योंकि आप जानते हैं ना वो इमरजेंसी है ना, 7 दिन और 7 रात, ज्यादा समय नहीं है, तो कैसे विस्तार में जाएंगे, कौन राक्षस था, किसका क्या कनेक्शन है, समय बीत जाएगा, उनको समय पे अपना लीला खत्म करना है। तो इसलिए सुखदेव जी महाराज की कृपा है ये परीक्षित महाराज पर, वो संक्षेप में जो बहुत आवश्यक है वो परीक्षित महाराज को समय के अंदर देना चाहते हैं, ताकि केवल श्रवण मात्र से उनका उद्धार हो जाए। तो ये कथा नारद मुनि के बाहुलाश्व के चर्चा में आती है। तो इंद्र आते हैं वज्र लेकर और अपने वज्र से लेकर प्रहार करते हैं उस पर, तो क्या होता है जोरदार उसको आघात होता है और पृथ्वी पर गिर जाता है, लेकिन मरता नहीं है, फिर उठ जाता है, फिर जोरदार गर्जना करता है। फिर वहां से ब्रह्मा जी आते हैं ब्रह्मदंड लेकर। अभी जानते हैं ब्रह्मदंड क्या होता है, ब्रह्मदंड ये सबसे बड़ी शक्ति है इस भौतिक जगत की, क्योंकि ब्रह्मा जी सबसे बड़े देवता हैं, सबसे पहले जीव है वो। उनके साथ में कई ज्यादा युद्ध नहीं हुए, आप कभी पढ़ा होगा तो इंद्र के साथ राक्षसों का युद्ध हुआ है, शिव जी का भी हुआ है और देवी का भी हुआ है, लेकिन ब्रह्मा जी को सब प्रणाम करते हैं। हाँ, रावण, हिरण्य, हिरण्यकशिपु सभी भयंकर राक्षस होते, भगवान से द्वेष करते हैं लेकिन ब्रह्मा जी को दंडवत करते हैं। तो ब्रह्म दंड जो है सबसे पावरफुल वस्तु है, वैसा ही यम दंड है, इससे कोई बच नहीं सकता है। जो भी जीव है, शरीरधारी देहधारी है, यम दंड ब्रह्म दंड से बच नहीं सकता है। तो ब्रह्मा जी आते हैं, ब्रह्म दंड उसको मार देते हैं, तो क्या होता है, केवल 2 घड़ी के लिए यानी कि 4 घंटे के लिए ये प्राणी बेहोश हो जाता है, मूर्छा में आ जाता है, फिर उठ जाता है, मरता नहीं है। क्या करता है, बड़ी लंबी जमाई देता है और उठ जाता है। सब लोग आश्चर्य करते हैं, अरे ब्रह्म दंड से भी नहीं मरा। उसके बाद में शंकर भगवान आते हैं त्रिशूल अस्त्र लेकर और उस पर आघात करते हैं। त्रिशूल अस्त्र से क्या होता है, उनका एक पंख जो है बगले का वो कट जाता है, लेकिन ये मरता नहीं, एक पंख लेकर भी गर्जना कर रहा है, सबको डरा रहा है। हाँ, ग्वाल बाल निश्चेष्ट से है, निष्प्राण से है, सभी देवता एक रात खड़े हो गए हैं। उसके बाद में सूर्यदेव, हाँ, जो अनंत तेजमान है, सहस्त्र घोड़ों का उनका रथ है, प्रकाशमान दैदीप्यमान प्रकाश रथ में बैठकर वो आते हैं और 100 बाण एक साथ मार देते हैं, तो दूसरे पंख में, दूसरे जो पंख है उनका, जो पंख है उसके अंदर वो ढस जाते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है, वैसे के वैसे रहता है, टस से मस नहीं होता है। हाँ, तो उसके बाद रावण के सौतेले भाई कुबेर अपना दिव्य तलवार लेके आते हैं, तलवार से उसे युद्ध करते हैं, दूसरा पंख काट देते हैं, बस इतना ही कर सकते हैं। दोनों पंख काटने के बाद भी ये टस से मस नहीं होता है, पूरी गर्जना के साथ रौंद रहा है सब लोगों को। फिर सोमदेव, चंद्र देवता वो आते हैं, उनका क्या है स्पेशलिटी, ठंडक, हाँ, फ्रीजिंग, उसका क्या नाम है, निहारास्त्र। निहारास्त्र मतलब क्या है, वो जब छोड़ा जाता है तो साहब एकदम बर्फ जमा होता है, समझे सब शिथिल हो जाते हैं, आपका हाथ भी उंगली भी नहीं हिल सकती है, पलके भी नहीं हिल सकती है, सब जगह बर्फ बर्फ हो जाता है एकदम, आदमी फ्रोजन। तो निहारास्त्र छोड़ने से क्या होता है, ठंडक पैदा होती है और ये ठंडक की वजह से बेहोश हो जाता है, फिर उठता है कुछ देर के बाद में। अभी देखिए जो अस्त्रों का वर्णन कर रहे हैं ये सभी भयंकर अस्त्र हैं। हाँ, इन लोग ये देवताओं के पास रहते हैं और एक एक अस्त्र को जब प्रयोग करते हैं तो हजारों राक्षस एक साथ मर जाते हैं, इस पर कुछ परिणाम नहीं हो रहा है। फिर अग्निदेव आते हैं, अग्निअस्त्र, अग्निअस्त्र लाने से क्या होता है, सब चीज जल कर राख हो जाती है। तो ये अग्निअस्त्र जब अग्निदेव छोड़ते हैं तो क्या होता है, केवल बकासुर के शरीर के ऊपर जो रोम है ना, रोम वो जल जाते हैं केवल, कुछ नहीं होता है। फिर आगे वरुण देव का क्या है, आप जानते हैं ना, जब बलि महाराज को भगवान ने दंड दिया था तो वरुण देव वरुण पास लेकर उसको बांध देते हैं और घसीट के लेके जाते हैं, है ना, वरुण देव का शक्ति है, वरुण पाश कहते हैं उसको। तो वरुण देव अपने वरुण पाश को डालते हैं उसके ऊपर और उसको जमीन में से घसीट के लेके जाते हैं, फिर भी उसको कुछ नहीं होता है। कुछ देर बाद वरुण पाश जो है निष्प्रभ हो जाता है। इसके बाद में भद्रकाली देवी, उसका गदा अस्त्र है, महावेगवती गदा भद्रकाली जो है वो आक्रमण करती है उसके ऊपर और बड़े वेग से दौड़ कर आकर उस गदा प्रहार करती है उसके ऊपर, और गदा प्रहार करने से दोबारा ये मूर्छित हो जाता है, बेहोश हो जाता है। उसके सर पे हमला होता है, बहुत उसके सर में दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद फिर जग जाता है और आखिरी व्यक्ति आता है। अभी देखो, बड़े बड़े महारथी देवता जो है, जो देवताओं के नेता है, उनके पास एक स्पेशल अस्त्र है, वो सब लोग आते हैं। लास्ट आदमी आता है स्कंद। स्कंद ये एक बहुत पावरफुल देवता है, उसके पास शक्ति होती है, शक्ति। तो शक्ति का जब प्रहार करता है तो ये बकासुर का एक टांग टूट जाती है, लेकिन एक टांग पर अभी इतना प्रहार सभी देवता लोग वन बाय वन कर रहे हैं, अभी 2 पंख कट चुके हैं, 1 पांव कट चुका है, रोए जल चुकी है, सर पे आघात हो चुका है, इतना गुस्सा आता है उसको, वो सभी को चोट से खदेड़ खदेड़ कर भगा देता है एक साथ सब लोगों को। ऐसा आकाश में क्या सीन है, एक पंछी है, बहुत भयंकर पंछी है, कोई डाउट नहीं उसके अंदर, लेकिन इतने महारथी देवता सब आसमान में अवकाश में अपने शस्त्रों को लेकर घूम रहे हैं और सबको केवल चोट से मार मार कर आकाश में खदेड़ रहा है। और क्या दृश्य दिखाई पड़ रहा है कि सारे देवता लोग आकाश में भाग रहे हैं, एक दूसरे को छोड़कर भाग रहे हैं, और ये सबको भगा रहा है, खदेड़ रहा है सबको। सभी देवता लोग हताश हो गए, क्या करें, भगवान भी गए और हमको भी परास्त कर रहा है, और सब खत्म हो जाएगा। भगवान देखते हैं और ये विद्युत जैसी मेघ गर्जना करता है जोरदार सबको भगाने के बाद में, विजय के उन्माद में। भगवान देखते हैं कि समय हो गया है, तो जो पेट में बैठे ना, भगवान को पेट में रखकर सब हो रहा है ये काम। यही कारण था कि क्यों उनको सारी देवता उनको परास्त नहीं कर सके। बीच में मैं बताने को भूल गया आपको, ब्रह्मदंड के बाद में कौन आते हैं, यमराज आते हैं और यमदंड को फेंकते हैं उसके ऊपर, और यमदंड को फेंकने से निश्चित मृत्यु होती है किसी भी जीव की, लेकिन इसकी मृत्यु नहीं होती है, इसको कुछ भी नहीं होता है, यमदंड टूट जाता है। सोच सकते हैं आप कितना शक्तिशाली रहेगा ये। ऐसे सब क्यों हुआ, क्योंकि उसके अंदर भगवान थे इसलिए इसकी मृत्यु नहीं हो पाई। और उसका और एक कारण है, मैं उसको आपको आगे बताऊंगा। तो फिर ये बड़ी भयंकर गर्जना करता है, तो उस समय भगवान उसके शरीर के अंदर जो विराजमान है उसको पवित्र कर रहे हैं, बड़े हो जाते हैं और अपने आप को गर्म करते हैं, उष्ण कर देते हैं, इतना उष्ण करते उष्णता बढ़ाते हैं कि इसको जलने लगता है अंदर अपने गले के अंदर। उस तुरंत भगवान को उगल लेता है वो, और उगल कर पुनः पकड़ने की कोशिश करता है चोंच से, लेकिन भगवान को गोल 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 घुमाते हैं और पीछे आकर उसकी पूंछ को पकड़ते हैं और हवा में गोल गोल घुमाते हैं, उसको पटक देते हैं। फिर ये उठता है तिलमिलाते हुए और गर्जना करते हुए भगवान पर आक्रमण करता है, बार बार भगवान को जाकर चोंच में दोबारा पकड़कर निकलने की कोशिश करता है। और उस समय भगवान बड़ी कुशलता से, जैसे कि होता है ना कोई एकदम एक्सपर्ट डांस करने वाला होता है, वो डांस करते करते ही अपना बहुत सारा काम कर लेता है। तो ये बड़ी कुशलता से, बड़ी आसानी से, बड़ी कोमलता से इसके खुले हुए चोंच पर ऐसा पांव रख देते हैं कि वो पांव के नीचे उसको जमीन पर लाते हैं और दूसरे हाथ से उसको चोंच, जैसे बालक कोई झाड़ का पत्ता होता है ना लंबा, या कोई हाथी कोई झाड़ पेड़ को फाड़ देता है, दो टुकड़े कर देता है, ऐसे सबके आंखों के सामने पलक झपकने के पहले ही तुरंत उसको फाड़ देते हैं चार चोंच को, और बकासुर का वध हो जाता है। और उस समय सारे ग्वाल बाल जो निश्चेष्ट से खड़े हैं, देवता लोग आकाश में परेशान हैं, सब लोग खुश हो जाते हैं और आकाश से पुष्प वृष्टि करते हैं भगवान पर, और ग्वाल बाल भी एकदम उत्साह से, वेल डन ब्रावो कांग्रेचुलेशन, बधाई हो तुम, तो बहुत अच्छे हो, बहुत शक्तिशाली हो, बधाई हो आपने आज और एक राक्षस को मार डाला। और एक सखा कहते हैं, हे सखे आप तो आप मौत के मुख से चले आए, आज मौत के मुख में चले गए थे और मौत से मुख से लौट के आए, और जिसने आपको मौत के मुख में बकासुर ने लिया था उसका भी वध करके आए, आप बहुत बच्चे हो। उनको एक्चुअली पता नहीं है कि भगवान कितने शक्तिशाली है। उनको हमेशा जब भगवान बालकों के सामने राक्षसों को मारते हैं तो उनको लगता है अरे बहुत पावरफुल है अपना कृष्ण, बहुत पावरफुल, शायद देवता होगा, शायद तपस्वी होगा, शायद योगी होगा, ऐसे लोगते हैं, लेकिन वो परम परमेश्वर भगवान है ये उनको नहीं पता है योग माया के प्रभाव से। तो जब ये मरता है बकासुर, इतना भयंकर पहाड़ जैसा राक्षस जो है जमीन पर निश्चेष्ट सा गिर गया है, तो उसके शरीर से भी ज्योति निकलती है और भगवान के शरीर में विलीन हो जाती है। फिर बाहुला से पूछता, अरे क्या ऐसे कैसे हो गया ना पापी राक्षस। तो फिर नारद मुनि उनको समझाते हैं कि एक हयग्रीव नाम का राक्षस था, आपने उसका वर्णन सुना होगा, उसकी गर्दन जो थी वो घोड़े की थी, और उसने ब्रह्मा जी के साथ, ब्रह्मा जी के लिए तपस्या किया, प्रसन्न किया उनको और वर मांगा कि हमारा वध जो है वो केवल हम जैसे व्यक्ति से होना चाहिए। उसको पता था कि भगवान के पूरे 84 लाख योनि के अंदर ऐसा कोई जीव नहीं है जिसका शरीर मनुष्य का हो और सर जो है वो घोड़े का हो, तो वो सोच लगे हम अमर हो गए। तो सत्ययुग में ही भगवान जो है हयग्रीव अवतार धारण करते हैं और इसका वध कर देते हैं। इसका पुत्र होता है जिसका नाम है उत्कल राक्षस, और ये भी बहुत महापराक्रमी था, इसने तपस्या करके बहुत बल प्राप्त किया था। नारद मुनि बता रहे उसका उत्तर बाहुलाशु राजा को, तो 100 साल तक उसने सभी देवताओं को अपने अपने राज्यों से पदच्युत करके उनके सिंहासन पर आरूढ़ होकर 100 साल तक स्वर्ग लोगों का आनंद लिया था उसने, और सभी देवता भयभीत होकर गुफा में छुपे हुए थे। अरे बेचारे देवताओं का लाइफ जो है ना बहुत डेंजरस होता है, हाँ, हम सोचते हैं हम लोग यज्ञ करेंगे यहाँ पर, दान पुण्य करेंगे और देवता बनेंगे। आप देखते हैं जब भगवान का अवतार होता है देवताओं के लिए हर रोज कष्ट है। कोई उत्कल आता है, कोई प्रमिल आता है, कोई अगासुर आता है, कोई आता है, क्या करता क्या है, एक ही करता है। ये लोग आराम कर रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, सोमरस पी रहे हैं, अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं। अचानक वो आक्रमण करता है, सबको भगा देता है, सिंहासन खाली करता है, तो ये सब अप्सरा लोग भागते हैं देवता लोग के साथ, गुफा में छुप जाते हैं। और जब तक भगवान उसका वध नहीं करते हैं तब तक छुपे रहते हैं और छुप छुप के जिंदगी बिताते हैं। ये कैसी खुशी है बताओ, कुछ दिन का आनंद, बहुत दिन का गुफा में निवास। इट्स अ वेरी फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन। तो कैसे कह सकते हैं हम लोग स्वर्ग लोक में आनंद है, खास कर जब भगवान अवतार लेते हैं तो बहुत भयंकर उनका कष्ट होता है उनको, बार बार अंदर, बार बार बाहर, बार बार सिंहासन पे, बार बार गुफा में, बहुत अस्थिरता होती है। तो ये कभी कभी 100 साल तक चलता है। तो ये उत्कल ने 100 साल तक उनका राज्य का उपभोग किया, सभी अप्सराओं का, सोमरस का, नंदनवन का और अच्छे अच्छे व्यंजनों का आनंद लिया उसने। तो ऐसे ही मगरूर होकर वो एक बार जाजली मुनि के आश्रम में आया। तो जाजली मुनि में बड़े तपस्वी हैं, 60,000 साल तपस्या किया उन्होंने और उनका इतना इतना भजन का प्रभाव था कि जाजली मुनि के आश्रम में जितने भी जीव हैं वो सब एकदम द्वेष, हिंसा, वैर छोड़कर गले मिलते थे। हिरण और सिंह और वाघ और हाथी और सिंह और भेड़िया और खरगोश और गाय और सिंह, ऐसे सब लोग गले मिलते थे, आराम से रहते थे। कोई इंसान नहीं होती, कोई द्वेष नहीं है, कोई वध नहीं कर रहा है, सब लोग आराम से रहते हैं, यहाँ तक कि मछली मछली को नहीं खा रही है। ऐसा ही प्रभाव उस वो बंसी के अवतार हरिवंश गोस्वामी जी का भी था, मदन टेर के वृंदावन के धाम में। सब जगह पर द्वेष रहित वातावरण, उनके आश्रम में कोई किसी को हिंसा, कोई ईजा, कोई जख्म नहीं करता था, किसी की तरफ से मतलब आदि भौतिक क्लेश है ही नहीं, सुंदर वातावरण था उनके आश्रम में। तो घूमते घामते ही आ गए उधर उत्कल अपने मद में मस्त होकर। उसके पास एक लकड़ी की लंबी बांसुरी जैसी एक थी, वो उसने क्या किया, एक भरा जलाशय था, बहुत सुंदर मछलियां थी जाजली मुनि के आश्रम में, उनके आश्रय में आराम से रहती थी। वे बैठ गया उसके हौद के किनारे में, डाल दिया अपनी डंडी को पानी के अंदर। अब जानते ना आप, जब कुछ डालते हैं पानी के अंदर सब मछलियां उसके आसपास में आती, कुछ उसके अंदर घुस जाती, तो कुछ मछलियां कुतूहल की वजह से उसके अंदर घुस गई होल के अंदर से। जैसे ही वो घुस जाती थी वो उसको निकाल के तुरंत खा लेता था, फिर डाल दिया पानी के अंदर, फिर कुछ मछलियां आ गई, जैसे आ गई तुरंत मुंह खोल के डाल दिया, ऐसा मछलियों को खा रहा है। जाजली मुनि वहां पर आते हैं और कहते हैं देखो हमारे आश्रम में ये सब काम नहीं होता है, अपना काम तुरंत बंद करो। तो जोर से हंसा, ठहाका मार के, और जाजली मुनि का उसने मतलब अपमान कर दिया दृष्टि से, बहुत ऐसे सार्कास्टिकली उपरोधिक भाव से हंसा उसको। फिर उन्होंने उनको चेतावनी दी, देखो हमारे आश्रम में कोई जीव किसी का वध नहीं करता, आप यहां पर आकर मछली मत खाओ। फिर भी उसके सामने ही डंडी डालकर मुंह में छान मछली डाल रहा है। तो जाजली मुनि कहते हैं बहुत गर्व है आपको अपने बल पर, और मेरा कहा नहीं मानते हो, बगुले जैसे मछली खा रहे हो पकड़ पकड़ के, जाओ बगुला बन जाओ। और वो इतना सुंदर था राक्षस होने पर भी, बहुत बलशाली, उसका बहुत आकर्षक शरीर था, मुकुट वुकट धारण करके, अलंकार धारण करके वहां पर आया था वो। जैसे कहते बगुला बन जा, तुरंत बगुला बन जाता है। अरे मैं क्या हो गया, ये समझ में आया उसको, अरे हमने बड़े महान तपस्वी का अपमान किया है, तुरंत गर्व चूर हो जाता है उसका और पैरों में गिरता है बगुले के शरीर में। और महाराज से बोलता है मान मुनि जी, महाराज जी माफ कीजिए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा, उत्साह दीजिए, कुछ बताइए हमारे उद्धार का कारण। जब भी वैवस्वत मुनि के 28 युग खत्म हो जाएंगे तब परम भगवान श्री कृष्ण अवतार लेंगे, तभी जब वो तुम्हारे शरीर में प्रवेश करेंगे तब तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। इसलिए बगुला जो था वो शापित होकर, फिर उस शापित होकर फिर आया था कृष्ण भगवान की लीला में और भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। तो देख सकते हैं हम लोग की भगवान की लीला जो है ये कितनी मधुर है एक्चुअली। तो ये कारण था उसका कि क्यों सभी देवताओं से उसका वध नहीं हुआ, क्योंकि उसको वरदान था कि कृष्ण भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। इसलिए शंकर, यमराज, ब्रह्मदेव आदि सभी देवताओं के हाथों से भी उसका वध नहीं हो पाया, क्योंकि कृष्ण भगवान के हाथों ही उसका वध होना था। इसलिए वो सभी देवताओं के सामने अपरास्त नजर आया, अपराजित होते हुए नजर आया, मतलब परास्त नहीं हुआ उनके सामने, उनके सबसे महान अस्त्रों से भी वो टस से मस नहीं हुआ, क्योंकि ऋषि का उसको आशीर्वाद था और ऋषि के आशीर्वाद से फिर भगवान के हाथ से उसका उद्धार हुआ और फिर वो अपने पापों से मुक्त हो गया, सायुज मुक्ति प्राप्त हो गई। तो घर लौट के आया सब ग्वाल बाल और बताने लगे गोपियों को और गोपालों को, माताओं को, पिताओं को कि ऐसे ऐसे हुआ, ऐसे बड़ा बड़ा पर्वत समान गगुला आया था, फिर हमारे कन्हैया ने उसको निगल लिया उसको, फिर ऐसे हुआ वैसे हुआ। तो सब लोग बोलते अरे भयंकर काम हो गया, सब लोग तुरंत आके बछड़े को लेके आते हैं, उसकी पूंछ लेकर अलग अलग जगह पर लगाकर भगवान के शरीर पे मंत्र बोलते हैं सुरक्षा के और देवताओं को आह्वान करते हैं कि इसको बचाओ, पता नहीं क्या संकट इसके ऊपर आ रहा है, लेकिन बहुत अद्भुत बालक है, पता नहीं कौन है, इसके हाथों से बड़े बड़े राक्षसों का वध हो रहा है और बहुत आनंद करते हैं। फिर प्रभुपाद जी लिखते हैं उसके अंदर कि रोज का लीला था वृंदावन का ही, रोज शाम को सभी गोपियां, सभी ग्वाल बाल, सभी बड़े गोपाल, बड़े गोप जो है बैठकर चर्चा किया करते थे। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि त्रिविध ताप जो है दुनिया का, तीन प्रकार का ताप जो है, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आदि आत्मिक जो क्लेश है, वो भगवान की कथा सुनने से तुरंत नष्ट हो जाता है। हम सब लोग पीड़ित है उस त्रिविध ताप से, इसलिए नियमित रूप से हमको भगवान के लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। अरे हम बोल रहे हैं अरे हमारा डिवोर्स हो रहा है, हमारे बालक का ऑपरेशन हो रहा है, वो आईसीयू में है, और आप बोल रहे हैं भगवान की कथा सुनो। ये भी एक बहुत जटिल प्रश्न है, क्योंकि हमारे जीवन की समस्या इस प्रकार की है। तो कैसे इस अवस्था में भगवान के लिए हम लोग सुनने के लिए प्रवृत्त हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे, नॉट पॉसिबल। इसलिए कहने का तात्पर्य है कि जब भी कुछ भी नहीं है, मतलब एक्यूट कोई भयंकर घटना नहीं हो रही है, तभी भी जीवन में कष्ट चलते रहता है, पड़ोसियों से, मच्छरों से, कुत्तों से, बिल्लियों से, बीवी से, बच्चों से, घर से, पड़ोस सबसे कष्ट चलते रहता है। उस समय पर लगातार नियमित रूप से एक वैक्सीन के रूप में इस कथा का श्रवण करते रहना चाहिए। जब हम आम स्थिति में भगवान की कथा सुनते हैं और उसके प्रति रुचि उत्पन्न करते हैं तो संकट के समय भी उसको सुन सकते हैं। अचानक कोई बोलेगा कोई किसी का आदमी आईसीयू में मर रहा है, आप बोलेंगे उसके लिए भगवान की कथा पढ़ो, तो शायद वो अचानक सुनने के लिए प्रवृत्त नहीं होगा। मतलब हमारे हॉस्पिटल में जो मरीज आते हैं और मरणासन्न अवस्था में आते हैं, तो सब लोग नर्स लोग यहाँ से उनकी सेवा करते रहते हैं, उस तरफ से स्पिरिचुअल केयर हमारे जो स्टाफ है भक्त लोग जाके भगवान की कथा का पठन करते हैं। वहां पर जाके पेशेंट कोमा में है, बेहोश अवस्था में, उसको सुई भी लगाएंगे तो भी वो प्रतिसाद नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी आत्मा जो है सदैव जागरूक रहती है, इस बात की ध्यान रखना। आत्मा अगर निश्चेष्ट कोमा के शरीर में भी रहेगी, बेहोश अवस्था में शरीर रहेगा, फिर भी आत्मा जो है कभी बेहोश नहीं होती है, आत्मा हमेशा सचेत रहती है। इसलिए और शरीर जब छूटता है तो आखिरी समय तक श्रवण शक्ति जागृत रहती है। बोले आप लुले हो जाएंगे, अंधे हो जाएंगे, हाँ आपके जबान की टेस्ट खत्म हो जाएगी, नाक से जो सूंघने का शक्ति है वो खत्म हो जाएगा, स्पर्श ज्ञान खत्म हो जाएगा और कुछ कार्य नहीं कर सकते आप, कुछ चेतना को प्रतिसाद देते नहीं है। इस सारी अवस्था में होने के बाद भी कान से भी आप बहरे हो सकते हैं, जस्ट इमेजिन ना, कान से भी बहरे हो गए, पूरा कान बंद, आप ऑडियोमेट्री करो, टेस्ट करो, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। ऐसा होने पर भी आत्मा की श्रवण शक्ति नष्ट नहीं होती है, क्योंकि कान एक यंत्र है, कान नहीं सुनता है, आत्मा सुनती है। कान की आंख आंख नहीं देखती है, आंख के माध्यम से आत्मा देखती है। हाँ, त्वचा जो है वो स्पर्श नहीं करती है, स्पर्श का अनुभव नहीं करती है, त्वचा के माध्यम से आत्मा स्पर्श का अनुभव करती है। इसलिए कान भी बहरे होने के पश्चात भी हमको श्रद्धा होनी चाहिए कि आत्मा जो है सचेत रहती है, और सबसे आखिरी जब शरीर छूटता है तो सबसे लास्ट आत्मा के साथ श्रवण शक्ति भी चली जाती है। ये भगवान ने क्यों ऐसा व्यवस्था किया है, ताकि उनके बारे में हम सुने और मौका मिले हमको सुनने का। लास्ट मोमेंट में भी सब कुछ समाप्त होने बाद भी अगर कोई हमको बड़ी कृपा से उनका नाम या उनके लीलाओं को सुनाएगा तो हम उसको एब्सॉर्ब, उसको स्वीकार कर सकते हैं आत्मा के स्तर पर। ये दिव्य चेतना है, हाँ ध्वनि के रूप में हम बोल रहे हैं, लेकिन क्या बोल रहे हैं, भगवान का विषय बोल रहे हैं, भगवान उस विषय में सम्मिलित है, मतलब भगवान ही उनको दे रहे हैं, इज दैट राइट। भगवान का नाम के रूप में, लीला के रूप में भगवान उनको हम दे रहे हैं और भगवान ही वो स्वीकार कर रहे हैं आत्मा के सर पर, उसका सार स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए हमको ये पता होना चाहिए की बड़ी दया से अगर कोई भक्त का, कोई व्यक्ति का, कोई जान पहचान के व्यक्ति का देहांत हो रहा है, बड़ी कृपा से जाकर वहां पर भगवान का नाम लेना चाहिए, या तो भगवान लीलाओं को पढ़ना चाहिए बैठकर। हमारे हॉस्पिटल में तो कई धर्म के लोग भगवद गीता सुनते सुनते शरीर छोड़ चुके, अलग अलग धर्म के लोग, एक जगह कुरान पढ़ाया जा रहा है, एक जगह बाइबल पढ़ा जा रहा है, एक जगह भगवद गीता पढ़ाई जा रही है, एक जगह पर अगासुर की लीला पढ़ी जा रही है, और दोनों सुनते हुए मरीज के देहांत हो रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा है। हाँ, अगर वो किसी भी तरह का लोग व्यक्ति हो, अगर उसको ये न किन प्रकार भगवान की लीला सुनने का मौका मिल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं उसने किसी न किसी जन्म में जरूर अच्छे कर्म किए होंगे, नहीं तो वो ऐसे जगह पर आएगा कैसे जहाँ भक्त लोग खड़े हैं और उनको सब फॉर्मूला पता है और वो भाग भाग कर जाकर उसको भगवान का नाम सुना रहे हैं। हमको श्रद्धा होनी चाहिए कि जो फॉर्मूला हमको प्रभुपाद जी ने दिया है वो सबसे पावरफुल फॉर्मूला है। हरि अनंता, हरि कथा अनंता, उनका नाम, उनका अस्तित्व, उनकी लीला अनंत है। हम भक्त लोगों को, जो भक्त अपने आप को समझते हैं, उनको बड़ी कृपा से ये हरि कथा, हरि नाम लोगों तक पहुंचाने के लिए नए नए तरीके ढूंढने चाहिए, इनोवेटिव वेज वी शुड सर्च आउट, ताकि लोगों को इस हरि कथा का परिचय हो। ये हरि कथा इतनी पावरफुल, ऐसे कहा गया है कि हरि कथा जब कही जाती है तो सुनने वाले के भाग्य का उदय होता है। आप सब लोग तो भाग्य उदय किए हुए ही लोग हैं सब, लेकिन जब आम जनता में हरि कथा होती है बाहर कभी, तो उनके भाग्य का निर्माण किया जा रहा है कथावाचक के माध्यम से। तो बड़ा कल्याणकारी कार्य है श्रीमद् भागवत की कथा, पुराणों की कथा, भगवान की कथा जो है वो इतनी प्रभावी है कि जीवों के जो अनंत जन्मों के बंधन है वो सब काट सकते हैं बैठे बैठे। हम लोग कथा सुनते हैं फिर दोबारा जाकर पाप करने लगते हैं, इसलिए हमारा अकाउंट बढ़ते रहता है बार बार बार। लेकिन हमको श्रद्धा होनी चाहिए कि जब हम प्रामाणिक हृदय से, एकाग्रता से, श्रद्धा से जब भगवान की कथा श्रवण करते हैं तो साक्षात भगवान हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं, हमारी चेतना के अंदर, हमारे भाव के अंदर, हमारी दृष्टि में, हमारे कान में, हमारे स्पर्श में, सब जगह भगवान विराजमान हो जाते हैं। हमारे अस्तित्व को भगवान छा देते हैं, पूरा कवर कर देते हैं, कंप्लीटली वी आर कंप्लीटली कवर्ड इन, इमर्स्ड इन श्री कृष्णा। तो ये भाग्य हमको सबको मुमकिन है, इसलिए जब समय ओके है, मतलब यह दुनिया में कोई समय ओके नहीं होता है, कष्ट चलते रहते हैं, किसी को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, किसी को घर में कष्ट है, लोन है, लेकिन जब तथाकथित सामान्य स्थिति होती है उस समय हमें हमेशा भगवान के लिए रुचि उत्पन्न करने का प्रयास करना चाहिए। हम अब कल हम देहू में गए थे और देहू में हम लोग लश्कर की छावनी के बीच में से गुजरते हुए तुकाराम महाराज के गांव में चले गए। उधर लिखा था, इंग्लिश में वाक्य लिखा था, बहुत सुंदर वाक्य है, वो लिखा था कि इफ यू स्वेट ड्यूरिंग द टाइम ऑफ पीस देन यू विल ब्लीड लेस ड्यूरिंग द वॉर टाइम। अगर जब शांति है, युद्ध नहीं हो रहा है, उस समय सैनिक अगर बहुत मेहनत करता है युद्ध कुशल को प्राप्त करने के लिए, बहुत पसीना बहाता है, तो ऐसे कुशल योद्धा को युद्ध के समय बहुत कम खून बहाना पड़ता है, और जो लोग शांति के समय आराम करते हैं उनका युद्ध के समय बहुत खून बहता है। इसलिए साल भर लगातार दिन भर जब युद्ध नहीं हो रहा है, हाँ 71 में हुआ था, उसके बाद में 94 में हुआ, लेकिन लगातार हमारे योद्धा लोग जो है प्रैक्टिस करते रहते हैं हवा में उड़ने की, बम डालने की, गोली चलाने की, निशाना बनाने की। वो जितने सतर्क और कुशल रहते हैं शांति के समय, तब जब युद्ध होता है बड़ी आसानी से युद्ध कर लेते हैं और कम से कम जख्म स्वीकार कर लेते हैं। क्या हमारा तात्पर्य हमारे लिए कि जब हमारे जीवन में युद्ध का समय कभी होता है, अंतिम समय, युद्ध के प्रसंग बहुत सारे होते हैं, तो पारा महाराज भी कहते हैं जिन दिवस रात्र अम्मा युद्धा से प्रसंग, हाँ दिवस रात्र जो है बाहर से भौतिक दुनिया के साथ और मन के अंदर मन की इच्छाओं के साथ युद्ध चलते रहता है। दिन और रात में हम लोग अपने मन के साथ में, अलग अलग इच्छाओं के साथ में संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन आखिरी युद्ध बाहर का जब होता है, जब शरीर को छीनने का प्रयास करता है मृत्यु, तो युद्ध का प्रसंग है। लेकिन आम तौर पे जब हम लगातार भगवान के भजन में, भगवान के विषय में, भगवान के लीलाओं में रुचि उत्पन्न करने का प्रयास करते हैं, तो अंतिम समय पर उस अभ्यास के वजह से कोई कष्ट नहीं होता है, स्वतः ही सहजता से उनका नाम, उनकी स्मृति हो जाती है। व्हाट इज आवर पर्पस, हमारा उद्देश्य क्या है, रोज मंदिर में आना, अरे रोज थोड़ी कष्ट हो रहा है, सब कुछ ठीक है, कल बेबी का बर्थडे भी था, परसों हमारा प्रमोशन भी हो गया, और कल हमारा बेबी के अच्छे मार्क्स भी आ गए, और हमारी लड़की की शादी भी हो गई, सब अच्छा चल रहा है, ठीक है, अभी कल दोपहर को जाएंगे मंदिर में। नहीं, रोज लगातार मंदिर में जाना, जप करना भगवान के नाम का, भगवान की सेवा हो सके तो वो करना, उनके बारे में पढ़ना, कितनी कर रहे हैं हम लोग डेली, हमारे आत्मा को हम पोषण दे रहे हैं, और वो पोषण जो है उससे जो आत्मा की आध्यात्मिक पुष्टि हो रही है उसकी वजह से जो भी छोटे मोटे संकट आते रहते हैं उससे हम बड़ी आसानी से सामना कर सकते हैं कृष्ण भावना में रहते हुए। इसलिए अपनी जो बैटरी है स्पिरिचुअल बैटरी, उसको रोज चार्ज करना चाहिए, रोज के तौर पर उसको शक्ति देनी चाहिए, पुष्टि देनी चाहिए, और उस पुष्टि के आधार पर हम जीवन के सबसे बड़े भयंकर संकट को भी सामना कर सकते हैं। तब तक जीवन हम इस जलते हुए जीवन की अग्नि को हम शांत कर सकते हैं, ये शक्ति है भगवान की लीला, और वो लीला हमारे लिए प्रकट करने के लिए भगवान आते हैं। उनको कोई जरूरत नहीं है गौलोक धाम का दिव्य आनंद, दिव्य भक्तों का संग छोड़कर इस सड़े हुए भौतिक दुनिया में आने की कोई जरूरत नहीं उनको, लेकिन करुणावश प्रेमवश हम सबके प्रति वो अपना दिव्य धाम छोड़कर, दिव्य धाम को यहाँ प्रकट करके उसके अंदर प्रवेश करते हैं और दिव्य लीलाओं को प्रकट करते हैं। भगवान की लीला अनंत है, नित्य लीला है, उसका तो कितना शंकरषण भगवान वर्णन करने जा रहे हैं, सृष्टि के निर्माण से कर रहे हैं, अभी तक उनका शुरुआत भी पूरा तरह से नहीं कम्प्लीट हो गया, अनंत मुख से हजारों फन के मुख से और भगवान की लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं, समाप्त नहीं हो रही है भगवान की लीला, शुरू भी बराबर से नहीं हुई है। तो इतनी अनंत लीला में से कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ पर प्रकट करते हो, तो यहाँ पर जो हम भागवत में पढ़ते हैं या कुछ कुछ हमको पता है वो सब एक छोटा सा हिस्सा है उनका, एक गोलोक वृंदावन की एडवर्टाइजमेंट है, वो हमारे लिए कर रहे हैं, लेकिन वो क्या कर रहे हैं, अगर इन गोलोक वृंदावन की एडवर्टाइज वाली लीला के अंदर आपको रुचि उत्पन्न होती है, और ये एडवर्टाइजमेंट भी क्या कहते हैं उसको, अनंत है, अनलिमिटेड है, हाँ कितना पढ़ेंगे आप, भागवत पढ़ेंगे कि गर्ग संहिता पढ़ेंगे कि ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ेंगे कि ईशोपनिषद पढ़ेंगे, कहाँ कहाँ लीला नहीं है कि भक्त सामुन सिंधु के अंदर प्रभुपाद ने उदाहरण के तौर पर कितनी लीला दी है, अनंत स्मॉल स्मॉल थिंग्स ही हैज गिवन, एक एक पॉइंट के लिए ये लीला, उसके लिए वो लीला, उसके लिए वो लीला, आपको भागवत में भी नहीं मिलेगी, ऐसे प्रभुपाद जी ने कितने दाखले दिए हुए हैं। तो ये जो छोटी सी झलक है ये भी अनंत है, और उसके प्रति हमारा आकर्षण हो गया तो भगवान हमें नित्य अनंत लीला के साथ में परिचय करा देंगे, कितनी बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, भगवान स्वयं अपने दरवाजे में आकर हमको अपनी लीलाओं का परिचय करा दे रहे हैं, हमारी आंखों के सामने लीला को प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि बद्ध जीव जो हम सबको उनको छोड़कर इस दुनिया में ठोकरे खा रहे हैं उनके मन में उनके प्रति कुछ आकर्षण पैदा हो, कुछ रुचि पैदा हो, और जैसे वो रुचि पैदा होते हुए देखते हैं तुरंत खींच लेते हैं उनको, सब कुछ खुद ही कर रहे हैं, देखिए आप, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, खुद आ रहे हैं, खुद लीला कर रहे हैं और देख रहे हैं, वो कृपा बरसाने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे मन में रुचि उत्पन्न हो गई तो हमको खींच रहे हैं, आगे आगे का आनंद दे रहे हैं, आगे आगे की सेवा दे रहे हैं, सब जगह सुरक्षा कर रहे हैं, आतंकवाद से बचा रहे हैं, आत्मा के ऊपर जो आतंक होते हैं इच्छाओं के उससे बचा रहे हैं, भक्तों का संग दे रहे हैं, सब कुछ खुद कर रहे हैं, वो जैसे छोटे से बालक के लिए गोद में जो होता है जस्ट जन्मा हुआ नवजात शिशु, उसके लिए सब कुछ माँ करती है, एवरीथिंग मुंह में भी डालती है, पीस पीस के पूरा, थोड़ा बहुत डाइजेशन अंदर होता है लेकिन वो जो बाहर निकल रहा है उसको भी साफ कर रही है, अंदर भी डाला जा रहा है, सब कुछ एवरीथिंग, वैसे ही हमारी अवस्था है, हमको केवल अपना काम करना है, अपना काम यही है, भगवान के नाम का जप करना, भगवान के संग में रहना, और ये असीम कृपा जो हमारे पर हो रही है उसके बारे में चिंतन करना, और हमेशा भगवान को धन्यवाद देना कि थैंक यू माय लॉर्ड, पता नहीं आपकी कृपा नहीं होती तो मैं आज कहां किस गंदी नाली में सड़ रहा होता, इट्स अ फैक्ट एक्चुअली, आज भी अगर हम छोड़ देंगे ना तुरंत गंदी नाली में गिर जाएंगे, भौतिक दुनिया के बहुत ही गंदी जगह पर हम लोग पड़ेंगे, जो जो भक्त लोग कभी कभी दुर्भाग्य से अपना भक्ति का साधन छोड़ देते हैं, देखिए क्या अवस्था होती है उनकी, बहुत भयंकर अवस्था होती है, लेकिन भगवान फिर भी इतने दयालु हैं कि अगर आपने जीवन में एक बार भी कभी भी दिल से कुछ किया होगा उनकी सेवा के अंदर, दिल से मन से, तो आपको छोड़ते नहीं हो, थोड़ा थोड़ा गंदी नाले का अनुभव देंगे फिर उठा के लेके आएंगे। चैतन्य महाप्रभु ने ऐसे किया ना, वो जो क्या भक्त नाम था उसका, हाँ वो जो भट्टारी के पास में गया था, काल कृष्ण गया था, वो निकल गया, चैतन्य महाप्रभु के साथ में था वो फिर भी गया, इतना प्रलोभन है दुनिया में, हाँ खाली यस करने की देर है बस, हम लोग प्रलोभन को यस करेंगे तुरंत अंदर चले जाएंगे, पता भी चलेगा ना कितने गहराई में चले जाएंगे। तो घुस गए वो पूरे अंदर, ऐसे नाचने लगे पागलों की तरह। महाप्रभु जी उन सभी नशा करने वाले लोगों के बीच में गए, उसको पकड़ा ऐसे महाप्रभु ने, घसीटते हुए लेके आए बाहर उसको। लग रहा है बहुत क्रूर कार्य है, इतना पकड़ के बालों को पकड़ खींच के लेके जा रहे, लेकिन बड़ा दयापूर्ण और प्रेमपूर्ण कार्य है वो। बहुत गंदी जगह से उसको बचाने के लिए लेके आ रहे हैं और पुनः अपनी सेवा में अपनी कृपा में उनको स्थित कर रहे हैं। तो हमारे लिए भी ऐसी आशा है, लेकिन महाप्रभु चैतन्य को और कृष्ण भगवान को ऐसा कार्य करने के लिए मजबूर नहीं करना कि हम चले जाएंगे और बाल पकड़ के हमको लेके आएंगे, कोई चिंता करने की बात नहीं है, जाकर थोड़ा चख लेंगे हम वहां जाके। डोंट डू दैट, कष्ट है वो भगवान को दे रहे हैं उसके लिए। इसलिए श्री वृंदावन धाम जो है भगवान को बड़ा प्रिय है, पूरे सृष्टि के निर्माण में उनको पृथ्वी लोक प्रिय है और पृथ्वी पर उनको भारतवर्ष प्रिय है और भारतवर्ष में उनको श्री ब्रजभूमि प्रिय है और ब्रजभूमि में उनको अनंत वन है उनको जो बहुत प्रिय है, उसके अंदर 108 वन उनको बहुत प्रिय है, उसके अंदर 12 वन उनको ज्यादा प्रिय है, उस 12 वनों में से श्री वृंदावन धाम बहुत प्रिय है। और श्री वृंदावन धाम में जमुना जी बह रही है, श्री गिरिराज जी का निवास है और भगवान अपनी चुनी चुनी हुई सबसे अंतरंग लीला जो है इस जमुना किनारे और गिरिराज के आसपास नंदगांव बरसाने में करते हैं। और ये नंदगांव बरसाना गोवर्धन सभी वृंदावन में आता है एक्चुअली, टेक्निकली आज के ज्योग्राफी में सब अलग अलग परगना बने हुए उसके, लेकिन टेक्निकली श्री वृंदावन धाम में गोवर्धन नंदगांव बरसाना यहाँ तक की वो जावट और जमुना किनारा और सब कुछ उसमें आता है। भगवान ने अपना सबसे मधुर सबसे उत्कट लीला जो है वहां प्रकट किया है और देवताओं को भी वो लीला का आस्वादन मुमकिन नहीं है, प्रवेश नहीं उनके अंदर, और वो हम जैसे बद्ध जीवों को मनुष्य जीवों को भगवान उसका आस्वादन करा रहे हैं। कितनी भाग्य की बात है, भगवान की असीम कृपा से आप सब लोगों की कृपा से हम आज वृंदावन जा रहे हैं हम कुछ भक्तों को लेकर, और ये कथा जो हमने अभी कही उसका हमको भी लाभ हो रहा है क्योंकि हम लोग मैं जाऊंगा खदीर वन में फिर दोबारा उसका चिंतन करूंगा, यमुना किनारे गिरिराज के तलैटी में परिक्रमा देंगे और सभी लीलाओं का स्मरण करने का प्रयास करेंगे और ये प्रार्थना करेंगे, हमको सबको करना चाहिए कि ये जो स्मृति है वो बनी रहे माइंड के बैकग्राउंड में, चाहे दुनिया के कर्तव्य गृहस्थी के कर्तव्य बिजनेस के कर्तव्य काम हम लोग करते करते रहेंगे, लेकिन हे कृष्ण भगवान, हे बलराम जी महाराज, हे गिरिराज जी, हे जमुना जी, आपकी स्मृति हमारे माइंड के बैकग्राउंड में चलती रहे चित्रपट की तरह, शुड गो ऑन कॉन्स्टेंटली, यही हमारी प्रार्थना है। हरे कृष्णा, श्री कृष्ण भगवान की, श्री कृष्ण लीला की। कोई किसी का प्रश्न है? एनी क्वेश्चन? हरे कृष्ण, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है, मैं कृतज्ञ हूँ, आप लोगों के उत्साह के वजह से हम कथा बोल सकते हैं, क्योंकि अगर श्रोताओं के अंदर उत्सुकता नहीं होगी और श्रोताओं के अंदर अगर वो भगवान के प्रति आकर्षण नहीं है तो वक्ता नहीं बोल सकता है। श्रोताओं के तीव्रता के अनुसार वक्ता के मुख से भगवान बोल लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।